हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद नवाध्याय 33वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। यदा रहितम आत्मानम भूतेन्द्रिय गुणाशयः स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यम रचति। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, है ना। यस्य इहा हरेर दास्य क्या है, कर्मणा मनसा गिरा, निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। यह सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में यह घोषित करते हुए इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। वह यह नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। दिव्य प्रेमामयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बलात् कराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपने इंद्रियों का दास होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममय सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है। भगवान स्वराट अर्थात पूर्णतया स्वतंत्र है, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतया स्वतंत्र या स्वराट है, क्योंकि वहाँ बलात् सेवा नहीं ली जाती। वहाँ दिव्य प्रेममय सेवा स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण होती है। ऐसी सेवा की प्रतिबिंबित झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा या पति के प्रति पत्नी की सेवा में अनुभव की जाती है। मित्रों, माता पिता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बलकृत नहीं अपितु एकमात्र प्रेम के कारण है। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममय सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में वर्तमान है। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। यह श्लोक ज्ञानियों पर भी लागू होता है। जब प्रबुद्ध ज्ञानी समस्त कल्मशों से यथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के साथ साथ प्रकृति के गुणों वाले इंद्रियों से मुक्त होता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और इस तरह भवबंधन से छूट जाता है। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने तक एक मत है, किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं, वहीं भक्तगण प्रेममय सेवा में और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। भक्तगण अपने स्वतः स्फूर्त सेवा भाव में आध्यात्मिक वैष्टित्व विकसित कर लेते हैं। वैष्टित्व मतलब इंडिविजुअलिटी, कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य रस तक पहुंच जाता है। आज अनुलंबित भुजो कनका बता तो संकीर्तने पुत्रो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। सो यहाँ पर ये जो श्लोक है ये भगवान द्वारा बोला गया है ना। सो ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पे उनका जन्म हुआ, स्वयंभू कहते हैं क्योंकि किसी माता के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ उनका, है ना, कोई भौतिक कारण नहीं है उनके जन्म का, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। सो जन्म होने पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके मन में एक स्वाभाविक इच्छा थी सृष्टि करने की, है ना। तो उस इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान का ध्यान किया, और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने अनेक स्तुतियाँ की और भगवान से प्रार्थना की कि आप प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए कि मैं सृष्टि कर पाऊँ। अभी कुछ दिख नहीं रहा है अभी, है ना, ना कोई ग्रह दिख रहा है, हर जगह पानी ही पानी है, मेरा मन व्यथित हो रहा है, मेरा मन, है ना। सो आप मुझे, उन्होंने दो प्रार्थनाएं की भगवान से ब्रह्मा जी ने। पहला तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ मुझे जो सृजन करने की शक्ति दीजिए, और दूसरा उन्होंने बोला कि जब मैं सृष्टि के कार्य में लगाऊंगा तो आपकी विस्मृति ना हो जाए मुझे, है ना। तो ऐसा नहीं हो कि मैं सृष्टि के कार्य में जुड़ूं लेकिन सृष्टि के कार्य में इतना उलझ जाऊं कि आप ही को भूल जाऊं, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक्चुअली में, है ना। सो हर एक भक्त को विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि भक्त लोग सेवा में जुड़ते हैं, हाँ, और अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि वो सेवाओं को ही इतना महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि वो जप करना छोड़ देते हैं और 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन वो जो सेवा है वास्तव में, अगर भगवान से कनेक्शन नहीं है, अगर भगवान को याद नहीं कर पा रहे, तो वो जो सेवा है वो वास्तव में भगवान की सेवा के निमित्त ना रहकर अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा से प्रेरित हो जाती है कि मैं इतना कार्य करूँगा तो लोग वाहवाही करेंगे, लोग मेरा गुणगान करेंगे, है ना। तो क्या इसकी संभावना है, क्योंकि सेवा में जब तक लगे हुए हैं तो मतलब भगवान की सेवा में तो जुड़े थे, भगवान की सेवा में जुड़े थे लेकिन स्वतंत्र इच्छा हमेशा हमारे साथ थी, है ना। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र इच्छा गायब हो गई, स्वतंत्र इच्छा हमेशा हमारे साथ थी, माया भी साथ खड़ी हुई थी, जैसे मन में जरा सा भी विचार आया भोग के लिए, हाँ, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी, हाँ, माया से बच के हम मंदिर में आए कि भगवान की सेवा करेंगे तो माया से छूटेंगे, लेकिन जरा सा भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा, हाँ, जो कि सुअर के मल के समान है, जो उससे भी निकृष्ट है, हाँ, जिससे पूजा लाभ प्रतिष्ठा की तुलना की जाती है, अगर जरा सा भी मन में ये ख्याल आ गया तो भगवान से जो वो कनेक्शन है वो कनेक्शन हट जाएगा और हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागना शुरू कर देंगे, है ना। तो उस समय भगवान की स्मृति नहीं होगी, भगवान की विस्मृति हो जाएगी, है ना। सो इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि मैं ये कार्य करना तो चाहता हूँ, हाँ, लेकिन आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि इस कार्य को करने से मेरे मन में आपके प्रति विस्मृति नहीं हो। सो भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रेयर्स पूरी हो गई हैं, भगवान उनको एश्योरेंस दे रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि देखो आप सृष्टि की रचना करना चाहते थे वो ऑलरेडी मैंने आपको वरदान दे दिया है ना। मेरी कृपा से आप सृष्टि करने में पूरी तरह से सक्षम हो, आप शुरू करो, सब आपको रिवील हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं कि आप जब मेरे से पूरी तरह से जुड़ जाओगे आप, है ना, जब आपका जो जब आप इंद्रिय प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त हो जाओगे, तो मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे, है ना। सो कैसे जुड़ा जा सकता है भगवान के साथ, है ना, ये प्रश्न है। कैसे हम मुक्त हो सकते हैं इन द्वंद्वों से, सुख दुख, सही गलत इत्यादि चीजों से, है ना, क्योंकि यही कारण है जो ये द्वंद है, जो भौतिक प्रकृति के साथ जो हमारा संग है, वो द्वंद्वों के कारण है, इच्छा के कारण है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, क्या है, क्या श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद मोहेन भारता, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारता, कि जो ये इच्छा का और द्वेष, ये सही है, ये गलत है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, है ना, ये जो द्वंद्व है, हाँ, सम्मोहेन भारत, इससे सम्मोहित होकर, हाँ, सर्गे यान्ति परंतपा, सर्गे यान्ति बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, है ना, सर्गे यान्ति सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे लोग इससे प्रभावित हो गए, इससे सम्मोहित हो गए, इसके अंदर उलझ के रह गए हैं, हाँ, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा, कि लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, तो छूटने का तरीका क्या है, क्या छूटने का तरीका है, निर्माण मोहा जित सं दोषा, हाँ, कि अगर हम अपने आप को बहुत ही विनीत समझे, अपने आप को हीरो नहीं समझे, अगर हम अपने आप को दास समझे, तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कह रहे हैं कि यहाँ जो संबंध है भगवान से, स्वराज्यम, जो स्वराज्यम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो स्वराज्यम शब्द का अर्थ है दास्य भाव, है ना, दास्य भाव, कि हम दास्य भाव में भगवान से संबंध स्थापित करेंगे। और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि देखो, तीन तरह से भक्ति की जा सकती है, भक्ति की तीन स्टेजेस हैं, हाँ, पहली क्या है, संबंध, दूसरा क्या है, अभिधेय, और तीसरा प्रयोजन। तो जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान अर्थात भगवान से अपना संबंध स्थापित करना, वो संबंध कैसे स्थापित होगा, वो संबंध दास्य रस में स्थापित होगा, है ना। हालांकि भगवान से हमारा एक विशिष्ट संबंध पहले से ही है, है ना, और जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर इसकी चर्चा कर भी रहे हैं कि हमारा एक विशिष्ट संबंध है, लेकिन अभी हमें उसकी जानकारी नहीं है, विस्मृति हो गई है। तो हम उस विशिष्ट संबंध को वापस कैसे प्राप्त करेंगे, वो विशिष्ट संबंध को वापस प्राप्त करने के लिए हमें जो सबसे मूल संबंध है, जो ऐसा रस जो कि सारे रसों में विद्यमान है, है ना, उस रस में हमें पहले स्थित होना पड़ेगा। वो कौन सा रस है, वो दास्य रस है। और रूपा गोस्वामी चर्चा कर भी रहे हैं, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि जो दास्य रस है, ये सभी रसों के अंदर विद्यमान है। शांत रस में भी दास्य रस है, दास रस जो है विद्यमान है, जो नदी, गाय, बंसी, पेड़ पौधे, ये घास, फल, फूल, ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हालांकि शांत भाव में है, है ना, फिर भी भगवान की सेवा में निरंतर रत रहते हैं। और जो दास्य भाव में है, जैसे हनुमान जी, रक्तक पत्रक ये लोग भी भगवान की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। जो साख्य रस में है सुदामा श्रीदाम इत्यादि, वो भी साख्य रस में क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं वो लोग, है ना। और वात्सल्य भाव में जो वृंदावन की जो वृद्ध गोपियां हैं, हाँ श्रीमती यशोदा माई है, हाँ नंद महाराज हैं, जो वृद्ध गोप हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो सारे भी वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। और जो गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण के समकक्ष हैं, जो भगवान कृष्ण की सम आयु हैं, है ना, वो माधुर्य भाव में भगवान की सेवा कर रही हैं, है ना। सो कोई भी पांच तरह में से कोई सा भी रस हो, जो पांच मुख्य रस हैं, उनमें सब में एक रस जो है वो कॉमन है। हाँ वो क्या रस है, वो दास्य रस है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि स्वराज्यम का अर्थ है दास्य रस, कि हम दास्य भाव में स्थित हों। और दास्य भाव में हम कैसे स्थित हो पाएंगे, दास्य भाव में हम स्थित हो पाएंगे गुरु की शरण लेके, क्योंकि भगवान दो रूप से हमारी हेल्प करते हैं। वैसे तो चार मुख्य तरह से हैं, एक तो विग्रह के रूप में, नाम के रूप में, और भगवान कह रहे हैं कि बाहरी रूप से मैं गुरु के रूप में हेल्प करता हूँ, और आपके मन में मैं परमात्मा अर्थात चैत्य गुरु के रूप में आपकी हेल्प करता हूँ, है ना। सो और भगवान कह भी रहे हैं, हाँ आचार्य माम विजानीयम, जो आचार्य है उसको मेरे समान ही समझो, है ना। और जो हम गुरु अष्टकम गाते हैं उसमें बोलते भी है ना, साक्षात हरिद्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कह रहे हैं कि जो गुरु है वो हरि के समान ही सम्माननीय है, आदरणीय है, गुरु को भगवान के समान आदर देना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि गुरु का भगवान से बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, है ना। क्योंकि गुरु पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और क्योंकि गुरु भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं, और क्योंकि गुरु अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है, इसलिए उनके पास वो शक्ति है उस संबंध तत्व के कारण कि वो दूसरे लोगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। और इसलिए भागवतम में भी कहा गया है ना कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर हितम, कि जो ब्रह्मचारी है उसको गुरुकुल में, उसे गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, दांतो बहुत ही विनीत भाव से, और क्या करना चाहिए, गुरोर हितम, गुरु के हित का कार्य करना चाहिए, वो काम करना चाहिए जिससे गुरु को फायदा हो। जैसे ब्रह्मचारी जाते हैं और जाके मधुकरी करके लाते हैं, जाके लोगों से भिक्षा मांग के लेके आते हैं, कुछ सामान ले आए, पैसे ले आए, हाँ तो क्या गुरु उस पर मौज उड़ाता है, हाँ वो गुरोर हितम जा रहे हैं, वो गुरु के कल्याण के लिए जा रहे हैं, लेकिन गुरु क्या करता है, जो भी वो सामग्री लेके आएंगे या धन लेके आएंगे उसको वो भगवान की सेवा में नियोजित कर देगा, है ना। तो भगवान की अगर हमने सेवा में लगना है, अगर हमने संबंध तत्व भगवान से स्थापित करना है, तो हमें एक गुरु की शरण लेनी होगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि गुरु की शरण लेना बहुत ही आवश्यक है ना। और कृष्ण भी भगवत गीता में कह रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिना, कि आप गुरु की शरण लो और उनसे जिज्ञासा करो, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। हाँ क्यों, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, वो जानते हैं, हाँ वो उनको गुरु को ज्ञान है, गुरु को ज्ञान विज्ञान सहितम, गुरु को ज्ञान भी है और गुरु को विज्ञान भी है, गुरु अनुभव भी कर चुके हैं उस चीज को। और वो कैसे अनुभव कर चुके हैं? वो अनुभव कर चुके हैं सेवा के माध्यम से। अनुभव करने का और कुछ तरीका नहीं है। अगर हमने जो भी ज्ञान हमने सुना या पढ़ा उसको अनुभव करने का एक ही तरीका है कि हम सेवा में जुड़े। अगर हम सेवा में नहीं जुड़ते, हम कितने ही शास्त्र पढ़ लें, कुछ भी कर लें, हमें कभी भी अनुभूति नहीं होगी, कभी भी हम उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेवा के माध्यम से हम भगवान से उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं। जब भगवान की कृपा होगी, जब गुरु की कृपा होगी, तभी जो शास्त्रों का जो सार है, जो तात्पर्य है, जो शिक्षा है, वो हमारे हृदय में प्रकट होगी। अदरवाइज अन्यथा हम कुछ भी करते रहे, कभी भी हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और अगर गुरु के प्रति हमारी निष्ठा अगर नहीं बनती है या बन के कम हो जाती है, तो जितना भी हमने समझा, जो हो सकता है कभी हमें शास्त्र का अर्थ समझ में आ भी जाए, लेकिन अगर हमारी गुरु के प्रति निष्ठा घटती है अगर, तो वो शास्त्रों का जो सार है वो भी लुप्त हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों की समझ हमें तभी तक रहेगी जब तक हमारी गुरु के प्रति निष्ठा रहेगी। जितनी हमारी गुरु के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा हम शास्त्रों को समझ सकते हैं, है ना। नहीं तो कितने भी शास्त्र पढ़ लें, हम उसको अपने मन से, अपने इंद्रियों से समझने की चेष्टा करते रहेंगे। जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा उसका उसमें समावेश नहीं होगा, जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा हम पर नहीं होगी, हमें वो समझने की जो शक्ति है वो शक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि ये भौतिक ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान में दोनों चीज़ों का महत्व है, भगवान की कृपा का भी महत्व है और हमारे प्रयास का भी महत्व है। अगर हम केवल एक ही कार्य करेंगे, अगर हम केवल गुरु की कृपा पर ही आश्रित रहेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। और अगर हम प्रयास करते रहे, गुरु की कृपा पर आश्रित नहीं रहे, तो भी बात नहीं बनेगी। सो इसीलिए स्वराज्यम अर्थात गुरु की शरण लेकर हमें गुरु के माध्यम से भगवान से एक संबंध हमें स्थापित करना चाहिए। उसके बाद गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। उसे अभिधेय कहते हैं। और जब गुरु को हम संतुष्ट कर पाएंगे, जब हम गुरु की कृपा से उसको समझ पाएंगे, तो प्रयोजन अर्थात कृष्ण प्रेम की हमें प्राप्ति होगी। उस समय हम समझ पाएंगे कि भगवान से हमारा कौन सा विशिष्ट संबंध है, है ना। तो हमें अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें कभी ऐसा सोचना चाहिए कि हम गुरु से पूछते हैं। कई ऐसे गुरु भी हैं वृंदावन में जो आप जाओ और उनको आप दक्षिणा दो, तो वो आपको आपका स्वरूप बता देंगे कि आपका ये वाला स्वरूप है। तो फिर वो बोलते हैं कि आप इस स्वरूप में ध्यान करके आप भगवान की भक्ति करो। ये बिल्कुल गलत बात है एक्चुअली में, है ना। इस बात को भक्ति विनोद ठाकुर ने काटा है इस बात को। अब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अधिकार ना लभिया सिद्ध दे भावे। अगर आपके पास अधिकार नहीं है, अगर आपके पास पूंजी नहीं है भक्ति की, सेवा की, अधिकार ना लभ्या सिद्ध दे भावे, और आप सोचो कि मैं तो फलानी गोपी हूँ या मैं फलानी मंजरी हूँ, और उस भाव में अगर हम व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, विपर्या जन्मे बुद्धि, तो हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। विपर्या जन्मे बुद्धि, क्यों? शक्ति रभावे। क्योंकि अभी उस स्तर पे काम करने की हमारे पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। तो जो सही तरीका है, सही तरीका यही है कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है और हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन अभी बीच में इस शरीर रूपी जो है असत अचित निरानंद का एक बाधा है। तो इस बाधा को हटाने के लिए, भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करने के लिए, भगवान का जो गुण है वापस हमें प्राप्त करने के लिए, हमें भगवान से संबंध बनाना होगा, और वो संबंध केवल और केवल सेवा के माध्यम से बनाया जा सकता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने हरि नाम की भी जो परिभाषा दी कि जो हरे कृष्ण मंत्र का जप है, तो प्रभुपाद ने बोला ये भी सेवा है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं कि हे कृष्णा, हे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, आप प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाएं, है ना। जब तक हम इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं लेंगे, तब तक हम इस द्वंद्व से बाहर भी नहीं निकल सकते। जब तक हम अपने आप को विनीत नहीं समझेंगे, जब तक हम सेवा पर हमारी दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम एक, अगर हमने मंदिर ज्वाइन भी कर लिया, अगर हम मंदिर से जुड़ भी गए, तो भी यहाँ पर भी हम प्रतिस्पर्धा में लगे रहेंगे, है ना। उस भक्त के साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कम है, वो ज़्यादा पॉपुलर है, मैं कम पॉपुलर हूँ, या मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, वो कम पॉपुलर है, वो नीचे है मेरे से, नहीं। आपस में हम आध्यात्मिक जगत में, ये जो प्रभुपाद ने जितने भी मंदिर बनवाए हैं वो सारे वैकुंठ जगत से अभिन्न है। हम वैकुंठ जगत में आ भी गए, लेकिन अगर सेवा पे हमारी दृष्टि नहीं होगी तो हम यहाँ पर भी हम प्रतिस्पर्धा में लगे रहेंगे। इसीलिए तो भक्तों में आपस में प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया, नहीं। आपस में भक्तों में बहुत मनमुटाव हो जाते हैं। क्यों मनमुटाव हो रहे हैं? क्योंकि सेवा पर दृष्टि नहीं है। चलो मान लिया कि कोई एक भक्त ने वाकई गलत काम कर रहा है, तो आपको उससे क्या लेना देना? आपकी भक्ति उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, है ना। आप उसके अधीन नहीं हो, आप प्रभुपाद के अधीन हो। आप यहाँ पर प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा के लिए आए हो। कोई भी भक्त आपको कुछ भी बोल रहा है या आपके प्रति कुछ भी बोल रहा है, उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सेवा पे ध्यान लगाओ। दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं या क्या नहीं बोल रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही बहुत खराब हो, है ना। अगर खराब नहीं होते तो यहाँ पे क्यों सड़ रहे होते हैं, नहीं। तो अगर खराब वस्तु को खराब बोल दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी, है ना, कौन सा इतना बड़ा जुल्म ढा दिया, है ना। अगर सेवा पर दृष्टि रखेंगे तो सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। कोई भी भक्त दूसरे भक्त से बुरा नहीं मानेगा उसकी बात का, क्योंकि उसकी पूरी जो चेतना है वो यही सोचने में लगी हुई है कि टाइम कम है, है ना, टाइम कम है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, है ना। क्योंकि टाइम कम है, कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए क्यों नहीं पूरी लगन से, पूरी मेहनत से मैं भगवान की और गुरु की सेवा करूं। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होता है उसका एक गुण होता है अव्यर्थ कालत्वम, है ना, वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद है, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते थे, है ना। और जो प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो आज पूरे संसार में ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और भक्त बना रहे हैं, आप उनका जीवन देखो, वो एक दिन में जो काम करते हैं हम एक महीने में नहीं कर सकते, है ना। एक एक क्षण को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं वो, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि टाइम कम है। जब तक ये बात नहीं समझेंगे हम, आलस्य, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, इनके अंदर ही इच्छा द्वेष समुत्थे, है ना, इसी में उलझे रहेंगे। हमें ध्यान लगाना है किस तरह से हम इच्छा द्वेष रूपी द्वंद से मुक्ते मुक्त हो, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख के समगेर, है ना। किस तरह से हम ये सुख दुख और द्वंद से हम मुक्त हो जाए, है ना। गच्छन्ति अमूढ़ा परम पदम, पदम परम गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, कि अगर हम ये भगवद गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है कि जब हम इस द्वंद से मुक्त हो जाएंगे, और कैसे मुक्त होंगे, निर्माण मोह जित संग दोषा, कि जब हम विनीत बनकर और ये सोच लेंगे कि ये जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं दिख रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो प्रॉब्लम सारी माइंड की हैं, उसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, है ना। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, दो व्यक्तियों की भगवान बात कर रहे हैं भगवद गीता में। पहली बात क्या कर रहे हैं, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, जो अहंकार से प्रेरित है, जो अहंकारी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कर्ता हम, मैं करता हूँ, है ना, मैं ही कर रहा हूँ, मैंने हजारों भक्त बना दिए, है ना, मैंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दिए। लेकिन जो तत्ववित है, जो तत्वदर्शी है, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तीसरे अध्याय में बात कर रहे हैं, 27वां-28वां श्लोक है ये, तो भगवान कह रहे हैं तत्ववित्तु महाभाव, लेकिन जो तत्ववित है, जो अहंकारी नहीं है, तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभाग हो, वो जानता है कि ये सारे गुणों के प्रभाव से चल रहा है काम, है ना, ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण का प्रभाव है, उसके प्रेरित होकर उसके प्रभाव में आकर काम कर रही हैं चीजें। कैसे काम कर रही हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, इति मत्वा न सज्जते, ये जान लेता है वो कि इंद्रियां हैं वो स्वाभाविक रूप से, हाँ स्वाभाविक रूप से वो खोजेंगी इंद्रिय पदार्थों को, है ना, आंख जो है स्वाभाविक रूप से अच्छा दृश्य ढूंढेगी, है ना, जो जीवा है स्वाभाविक रूप से अच्छा खाना खाना चाहेगी, है ना, कान जो है वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे, स्वाभाविक है गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तो उनको अपना काम करने दो, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, जो तत्ववित है वो समझ जाता है कि इसका ये मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगा, रुकेंगे नहीं, इसको अपना काम करने दो, हाँ इति मत्वाना सज्जते, अगर हमने ये बात समझ लिया, अगर हम इससे प्रभावित नहीं हो रहे, अगर हम, है ना, जो इंद्रियां अपना काम कर रही है आप अपना काम करो, है ना, ऐसा व्यक्ति जो है उसको तत्ववित कहते हैं, हाँ वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी निखिलाशु अपि अवस्थासु, कैसी भी अवस्था रहेगी, कुछ भी करेगा, हाँ जीवन मुक्त स उच्चते, वो हमेशा जीवन मुक्ति रहेगा, और ये अवस्था प्राप्त हो सकती है जैसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं, इहा यस्य हरेर दास्ये, कि हम जब हरि की सेवा में जुड़ेंगे और गुरु के मार्गदर्शन में हम हरि की सेवा में लगेंगे, तो हम बहुत ही आसानी से जो इंद्रिय वेग हैं, हाँ इंद्रिय वेगों के जो यंत्रणाएं, जो यातनाएं, उससे हम बहुत ही आसानी से अपने आप को निकाल पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ यस प्रभु।